प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा आज घोषित जलवायु लक्ष्य के तहत 2035 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 62 से 70% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखेगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण की सलाह के अनुरूप है। इसराइल का कहना है कि वे गाजा शहर से निकलने के लिए 48 घंटों के लिए एक अतिरिक्त रास्ता खोल रहा है क्योंकि उसकी बमबारी जारी है। आपको बता दूं कि लाखों लोगों ने इस दौरान शहर में शरण लिया हुआ है। इसराइल का अनुमान है कि लगभग 4,00,000 लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। ये संख्या एक हफ्ते पहले शहर में मौजूद लोगों की संख्या का लगभग 40% है। वहीं लेबर पार्टी की शाखाओं के एक समूह ने गाजा में नरसंहार के संयुक्त राष्ट्र के निष्कर्ष के बाद इसराइल के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए अपना समर्थन घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति के नरसंहार के प्रमुख निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया है और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस निष्कर्ष पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने भी इस मुद्दे पर अब तक कोई टिप्पणी जाहिर नहीं की है। वहीं बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के नवीनतम आंकड़े आज यानी गुरुवार को जारी किए जाएंगे। हालांकि इनसे बेरोजगारी दर में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन ये कोई बहुत बुरी खबर नहीं है। बेरोजगारी दर 4.3% रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले महीने 4.2% पर थी। हालांकि निवेश बैंक जेपी मॉर्गन के शोध अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये वृद्धि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त नहीं है। दावा किया जा रहा है कि 13 साल पुराने एक कर नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम आय वाले 12,00,000 कर्मचारियों, खासकर की महिलाओं को इस साल अपनी सुपरएनुएशन बचत में $50 करोड़ का नुकसान होगा। निम्न आय सुपर टैक्स ऑफसेट के तहत $37,000 तक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को $500 का रिफंड मिलता है, जो कि उनके सुपर एनुएशन में जाता है। जब इसे 13 साल पहले लागू किया गया था तो ये सबसे निचले 2 कर वर्गों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता था, लेकिन तब से उन कर वर्गों में बदलाव और मुद्रास्फीति के बावजूद ये उसी दर पर स्थिर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पहले स्वदेशी सांसद नेविल बोनर को कैनबेरा में एक कांस्य मूर्ति से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि ये सम्मान पुराने संसद भवन के बाहर इस मूर्ति का अनावरण करते हुए किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनियों में से एक पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए 55 इलेक्ट्रिकल वैन और ट्रक शामिल कर रही है। फेडेक्स का कहना है कि वे एडिलेड में 15 बैटरी चलित ट्रकों के साथ अपनी शुरुआत करेगी और उसके बाद सिडनी और मेलबर्न में व्यापक रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। बात करें भारत की, तो उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटने की खबर सामने आई है। 17 सितम्बर की रात चमोली जिले के नंदाघाट घाट में ये बादल फटा। ऐसे में आपको बता दें कि 7 लोग लापता हैं और 2 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह पर क्षतिग्रस्त है। इसी कारणवश मसूरी में 2,500 से भी ज्यादा पर्यटक तीसरे दिन फंसे हुए हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।